ورا کی جامع اور مانے صورتحال پیج 636. آپ دیکھیے کہ پرہیزگاری کے ناطے سے لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے عموماً لوگوں کی چار قسمیں ہوتی ہیں. ابراہیم بن ادم کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ ورا کے اعتبار سے لوگ چار قسم کے ہیں. پہلی قسم ورا قلیل اور کثیر دونوں کے پابند ہوتے ہیں. اب اس کو ساتھ ہی سمجھتے جائیے، یہ کون لوگ ہیں جو صغیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں. بالکل ایک عاجز اور پرہیزگار کی طرح ان کی زندگی گزرتی ہے، یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں قلیل پر محتاط رویہ اختیار کر کے ورا کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن جب بلندی کے معیار پہ پہنچ جاتے ہیں تو ورا کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو عام لوگوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، تھوڑا سا مال ہو تو بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں، کسی کا ایک روپیہ بھی نہیں کھانا چاہتے، پرہیزگار ہوتے ہیں. لیکن جو ہی ان کو کوئی منصب مل جاتا ہے، کوئی صدارت، کوئی وزارت، کوئی منصب ملتا ہے، تو پھر یہ اس میں کیئر نہیں کرتے، پھر عوام کا مال کھانا اپنا حق سمجھ لیتے ہیں. تو یہ کون سے کہ قلیل پہ راضی تھے لیکن کثیر ملا تو صبر نہ کر سکے، اور ورع اور تقوی کا جو اوپر ایک لبادہ پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا. اور ایسے لوگ پھر اتنے بے خوف ہو جاتے ہیں، نہ عوام سے ڈرتے ہیں نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو یہ بے لگام قسم کے لوگ بن جاتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کثیر سے تو ورع کرنے کے پابند ہوتے ہیں الحمدللہ، مگر قلیل کے بارے میں عدم ورع میں ملوث ہو کر اپنے کثیر کو بھی ضائع کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جس میں عموماً لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ جو عامۃ الناس ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ نہ زنا کرتے ہیں الحمدللہ، نہ شراب پیتے ہیں، نہ کچھ اور، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بہت بچتے ہیں، لیکن صغیرہ سے نہیں بچتے. چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو آپ چھوٹے کہتے ہیں لیکن وہ چھوٹے نہیں ہوتے، جو اصل میں لیڈس ٹو دی میجر سنز، مثلا گانے سننا، غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا، مرد و عورت کا اختلاط، اس سے کیئر نہیں کرتے. اب جب وہ اس طرح کے عادی ہوتے ہیں تو ان کے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا بھی ان کو فائدہ نہیں دیتا. پھر اسی طرح چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں، نہ جس کو چھوٹے کا ڈر ہے نہ بڑے کا، نہ قلیل کے بارے میں محتاط اور نہ کثیر کے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو کہہ لیجئے کہ کرمنلز ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، نہ صغیرہ گناہوں سے رکتے ہیں نہ کبیرہ گناہوں سے رکتے ہیں، اور من موجی قسم کے دل ہوتے ہیں ان کے، جدھر جو دل چاہتا ہے وہی کرتے ہیں. پھر اسلام کس ورا کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کون سا متبرع انسان پسند ہے جو تمام واجبات فرائض پر عمل کرے، ہر قسم کے منکر کو چھوڑے، ہر برائی سے رکے، ہر حرام چیز سے کنارہ کشی کرے، اور شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرے اور دور رہے؟ تو یہ ہے اصل میں متبرع. ایک اپنی پسند کی چیز کو اپنا لینا اور جو چیزیں نا پسند ہو اس کو چھوڑ دینا، یہ کسی انسان کا متبرع ہونا ثابت نہیں کرتا. عبداللہ بن مبارک کا ایک قول ہے، کہتے ہیں جو شخص 100% یعنی 100% تقوی اور پرہیزگاری پر عمل ہو، مگر ان میں سے کسی ایک چیز پر صرف، یعنی 100 میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں پرہیزگاری سے کام نہ لیتا ہو، تو ایسا شخص سرے سے متبرع ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر کتنا سخت کرائیٹیرین ہے. اور میں جب ان چیزوں کو پڑھتی پڑھاتی ہوں تو میں حضرت ابو ذر کو اللہ کے نبی کی ہوئی نصیحت کو یاد کرتی ہوں کہ ابو ذر کشتی کو باندھ لے کہ سمندر بڑا گہرا ہے اور حساب لینے والا بڑا باریک بین ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان پہ ظلم تو نہیں کرتی، لیکن انسان کو پوری عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. کوئی بھی چیز پوری ہو تو فائدہ دیتی ہے. آپ دیکھیے، آپ پورے گھر کو گرم کرنا چاہتے ہیں، اس ہیٹ بھی لگاتے ہیں، دروازے بھی بند کرتے ہیں اور ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں، تو کیا آپ کا کمرہ کبھی گرم ہوگا؟ اے سی بھی لگا دیں اور ساتھ باہر سے کھڑکیاں بھی گاڑی کی کھول دیں، تو کبھی بھی فائدہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. اسی طرح سے انسان کو جو کام کرنا چاہیے پورے دل سے کرے. کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں، آخر تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو کسی بھی کام کو احسن درجے پہ کرے، چاہے وہ ورا ہی کیوں نہ ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ورا کہاں سے ہوتا ہے؟ ہر چیز کا ایک محل ہے نا، ایک مخرج ہے. تو آپ دیکھیے کہ انسان کا دل، زبان، اعضاء اور جوارح، ہر چیز انوالو ہے ورا میں. یعنی دل سے بھی اس کا تعلق ہے، زبان سے بھی اس کا تعلق ہے، اور جسم کے دوسرے اعضاء سے بھی یہ چیزیں. جب تک یہ سب کچھ ملیں گی نہیں، تب تک انسان میں ورا نہیں آئے گا. مثلا زبان سے ذرا سے ڈھیلے ہو گئے تو دل کی باتیں چلی جائیں گی، اور اسی طرح سے اپوزٹ دوسری چیزیں، تیسری چیزیں. और आपको पता सबसे मुश्किल वरा किस चीज का है? जुबान का। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि इंसानों की अक्सरियत जुबान की वजह से जहन्नुम में फेंकी जाएगी। तो जुबान का वरा इतना मुश्किल है कि दिल से मुत्तकी होने के बावजूद, जिस्म के दूसरे अज़ा को, आंखों को, कानों को गुनाहों से बचाने के बावजूद भी कुछ लोग जुबान की वजह से फेल हो जाते हैं। फुदैल बिन अय्यास कहते हैं, जुबान का वरा बड़ा ही सख्त तरीन मामला साबित हुआ। जुनैद कहते हैं कि गुफ्तो शनीद में परहेजगारी से काम लेना अज़ा जवारे से परहेजगारी बरतने के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल और भारी काम है। सच है कि नहीं? आप अपने ऊपर लेकर सोचें, अमूमन मैं कहाँ फिसल जाती हूँ? जुबान पे काबू नहीं रहता। आंख तो हम बंद कर लेते हैं, कान भी बंद कर सकते हैं, लेकिन जुबान बंद नहीं होती, क्योंकि ये चीज हमारे अंदर ऐसे एक क्रेविंग के तौर पे आ चुकी है कि हम इसको इस्तेमाल करते रहे, इसको इस्तेमाल करते रहे। तो जब तक जुबान पे ये बात नहीं होगी ना, बात नहीं बनेगी। हसन का कौल है कि वरा की नशोनुमा होती है, यानी ये ग्रो करता है, जैसे छोटा सा पौधा है, फिर होते होते वो बड़ा होगा, मगर इसका असर यानी कलाम और उसकी असर पजीरी पर बहुत कम रहता है। यानी सारे जिस्म पे वरा आ जाता है, दिल भी अल्लाह से डरता है, दिमाग भी अल्लाह के बारे में सोचता है, हाथों से भी किसी को आप नुकसान नहीं देते, आपकी आंखें भी कोई गलत चीज नहीं देखती, लेकिन जो ही जुबान पे आने का वक्त आता है ये पीछे हट जाता है इंसान उससे। इसी तरह से इसहाक बिन खल्फ कहते हैं, गुफ्तगू में परहेजगारी और तकवा अख्तियार करना सोने और चांदी से भी ज्यादा महंगा है। अल्लाह अकबर। तो फिर हमें अपनी फिक्र करने की जरूरत है। अब अगला मसला ये है कि क्या वरा किसी तन्हाई में बैठकर करने वाला काम है या लोगों के बीच में भी इसकी जरूरत पड़ती है? तो याद रखिए, ये वो अमल है जो तन्हाई में भी और महफिलों में भी हासिल किया जाएगा। इतना खूबसूरत इसके ऊपर वाकया है इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, जो उनके साथ पेश आया। अपने दोस्तों के साथ मदीना के इर्द गिर्द किसी बस्ती में गए, एक जगह पड़ाव डाला और खाने का दस्तरखान लगाया। अभी वहां बैठे ही थे सब सजा के कि एक चरवाहा यानी शेफर्ड गुजरा, इनको देखकर उसने सलाम किया, पता चल गया कि मुसलमान है। आपने कहा कि आओ तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। चरवाहा कहने लगा, मैं तो रोजे से हूँ। हजरत उमर ने कहा, अच्छा, इतनी शदीद गर्मी के दिनों में भी रोजा रखते हो जबकि गर्म लू वाली हवा चल रही है? हाँ, फिर कहते हैं तुम तो सारा दिन धूप के अंदर और पहाड़ों की वादियों में बकरियां चराते रहते हो, ये बड़ा मुश्किल अमल है। तो चरवाहे ने क्या कहा, मैं अपने अय्याम के खाली औकात को इस तरह काटने की कोशिश करता हूँ। अब हजरत इब्ने उमर को शक तो कोई नहीं था, लेकिन उसके इम्तिहान लेना चाहते थे कि एक तरफ तो एक अमल में इतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है कि गर्मियों की दोपहरों में रोजे रख रहा है, दूसरी तरफ जरा देखते इसका दिल क्या क्या हाल है। कहने लगे, चलो इसके वरा का इम्तिहान लेते हैं। कहा कि ये तुम अपनी बकरियों में से एक बकरी मुझे बेच सकते हो? और वो किसी और की बकरियां चरा रहा था, यानी मुलाजिम था। हम तुम्हें इसकी कीमत दे देंगे और इसके साथ तुम्हारे साथ मिलके इसका गोश्त भी खाएंगे, कुछ गोश्त तुमको भी दे देंगे ताकि तुम रोजा खोल लो। चरवाहे ने कहा, मैं कैसे फरोख कर सकता हूँ, मेरी बकरियां नहीं, ये मेरे मालिक की हैं। तो इब्ने उमर ने इम्तिहान लेने की गरज से कहा कि फर्ज करो तुमसे कोई बकरी गुम भी तो हो सकती है ना, जाके कह देना मालिक को कि भेड़िया खा गया, हो सकता है ना, तो तुम्हारा आका क्या कर लेगा। तो ये बात सुनकर वो चरवाहा बैठा, यानी वहां से उसने पीठ फेरी और आसमान की तरफ उंगली उठाकर जोर जोर से कह रहा था, फाइन अल्लाह फाइन अल्लाह, फिर अगर मैं ऐसा करूंगा तो अल्लाह किधर गया? यानी मुराद क्या था कि मैं अल्लाह की निगाहों से कैसे बचूंगा। अब ये जुमला हजरत इब्ने उमर को इतना अच्छा लगा, इस जुमले को सुनकर बार बार दोहराने लगे, कालर रॉय, चरवाहे ने कहा, फाइन अल्लाह, किधर अल्लाह, किधर अल्लाह। फिर इब्ने उमर वापस आए, इस चरवाहे के आका को बुलाया जो उसका असल मालिक था बकरियों का, उससे वो सारी बकरियां भी खरीदी और वो चरवाहा भी खरीदा, क्योंकि उस दौर में गुलामी होती थी, और जाके उस चरवाहे को आजाद किया और वो बकरियां उसको तोहफे में दे दी। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। एक बकरी की कीमत खा लेता ना अगर वो शख्स उस वक्त, तो इतनी बकरियों का मालिक तो ना बनता। आप सोचते हैं कि ये सिर्फ उस चरवाहे के साथ हुआ, अल्लाह की कसम दुनिया में हर बंदे के साथ यही हो रहा है। हराम से एक बकरी खाते हैं ना, तो हम अल्लाह के दिए हुए हलाल की सैकड़ों बकरियों से खुद को महरूम करते हैं। लेकिन बहुत थोड़ा दिला होता है दुनियादार इंसान, वो छोटे से फायदे को देखकर राल टपकाने लग जाता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि हर इंसान के जो सरकमस्टांसेस है ना, हाल अहवाल, उसकी कंडीशन, उसके मुताबिक उसका बड़ा फर्क होता है। ये बड़ा अहम टॉपिक है। आप और मैं हर एक जितने भी लोग बैठे हैं, हम डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट हालात से हो सकते हैं, हमारा बैकग्राउंड फर्क है, तो हर एक से वरा की जो मकदार मतलूब है ना, वो फर्क होगी। मसलन कैसे, छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चों का वरा क्या है कि वो बड़ों की बातों में ना बोले, खाम खा बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें, सियासतदानों की बातें ना करें, इधर की बातें उधर ना करें, वो अपने काम से काम रखे, ये उनका वरा है। इसी तरह जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, दरमियानी, उनका क्या है कि जब उनसे मशवरा मांगा जाए, मशवरा दें, हालात को देखे, हुक्काम तक अपनी बात को लेकर चले। इसी तरह जाहिल और आलिम का भी फर्क हो सकता है, जाहिल का और आलिम का फर्क बहुत नुमाया है। हिबा कहते हैं कि आलिम का वरा यह है कि वह अपने कलाम के मोती बखेर कर लोगों को इससे फायदा लेने की राह हमवार करे, और जाहिल की भलाई इसी में कि वो सुकूत ही इख्तियार करे। कितनी खूबसूरत बात है, यानी चुप रहना ही बेहतर है। कुछ लोग चुप रहते हैं तो बड़े अकलमंद लगते हैं, देखने में बड़े जीनियस है, जब बात करते हैं तो बात करने के बंदा सोचता है ये बोले क्या, राइट? तो बंदा क्या बोले, कब बोले, जब उसको पता हो कि ये बात मैं कर सकता हूँ। बात छेड़नी नहीं चाहिए, बाज लोग बात छेड़ करना मुश्किल में पड़ जाते हैं, फिर बात संभलती कोई नहीं और फिर दूसरों की बातें सुनते हैं। जी, मैं आप सबको भी नसीहत करूंगी, हमारे यहाँ बचपन से एक चीज चल रही है, नीम हकीम खतरा है ईमान, ये सच है। आज जितने भी लोगों को जुरत मिलती है ना मौलवियों के लतीफे बनाने की या दीनदारों का मजाक उड़ाने की, उसकी वजह ये है, अधूरी बातें महफिलों में। ऐसे मिसाल आपको देती हूँ कि जैसे कई सिस्टर से मुलाकातें रहती हैं, क्या जी हम हर हफ्ते सब मिलती हैं, फिर क्या हम करते हैं, हम सब दोस्तें मिलके पढ़ती हैं, क्या करते हैं, हम एक टॉपिक चूज करते हैं, फिर उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या, आपने उस पर कुछ सुना, आपने कुछ सुना उस पर सुना, तो मैंने कहा उसके बाद एंड निकलता क्या, सारे एक जैसे, कोई एक है जो आपको चेक करे, ठीक है? तो कहती वैसे एंड पे अक्सर बहस हो जाती है, तो मैंने कहा आपको खुद ही नतीजा मिल गया, कभी फायदा ना। इसको कील व काल कहते हैं, मन काला व मन काला, उसने कहा और तुमने कहा। आज आप देखिए अमूमन लोग सवाल पूछते हैं ना, तो उसका आगाज कैसे होता है, मैंने सुना है कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, बालों कैसे कर, भाई ये जरा आप एक्सक्यूज मी बताएंगी कि आपने किससे सुना है, तो वो फिर मेरी दोस्त ने बताया, वो मेरी खाला की बेटी ने, वो किसी दर्स में जाती है ना, उनको वहां से पूछवाया। गलत तरीका, ये इल्म हासिल करने का बिल्कुल तरीका नहीं। आलिम चुप रहेगा तो नुकसान करेगा, ये भी नोट कर ले। इल्म है, खैर है, अल्लाह ने आपको कुरान सुन्नत का इल्म दिया, अब आप कहते हैं नहीं बताया फिर अमल करना पड़ेगा, फिर लोग दुश्मन हो जाएंगे, मैं नहीं बोलती, तो ये आलम के वरा से खिलाफ है। और जाहिल को आता कुछ नहीं, चार लफ्ज पढ़ के दूसरों को बताने लग जाता है, तो ये उसके वरा के खिलाफ है। अपनी पोजीशन को पहचाने। मुझे याद आ रही है तारीफ, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, में एक लिखाई थी, किसी को याद हो तो हाथ खड़ा कर दें, कि हकीकी आलिम कौन है, यानी आलिम जिसको आप इल्म वाला कहते हैं, वो तो मान लिया खशियत इलाही, वो तो बीसियों बातें हैं, लेकिन एक तारीफ जो वाकई इस बिल्कुल इसी मजमून की है, किसी को याद है? सूरह फातिर कई दफा पढ़ चुके हैं जी, आप बताइए। वो तो आमिल होगा ना, आमिल नजूमी, नहीं ये बात नहीं थी। आलिम कहते हैं वो शख्स जिसको अपने इल्म की वुसअत का एहसास हो, उर्दू में बताऊं, पंजाबी में कह लें या उर्दू में, जिसको पता हो मैं कितने पानी में हूं, छोटा बंदा और बड़ी बड़ी बातें करे, उलमा की टांगे काटने लग जाए और चार लफ्ज पढ़ के, ये आलिम नहीं। आलिम को अपने इल्म की वुसअत पता होती है कि इससे आगे मैं नहीं बोल सकता, जाहिल को कोई नहीं पता होती, वो बड़बड़ बोलता ही रहता है, हर जगह बोलता है, सवाल कोई किसी से पूछे जवाब वो देने को तैयार खड़ा होता है, तो लिहाजा दोनों का फर्क आएगा। इसी तरह इब्ने उयैना से जब वरा के बारे में पूछा गया तो कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत तारीफ है, इसको आप नोट करेंगे, इस इल्म के हसूल का नाम वरा है जिससे वरा की मारफत और इरफान नसीब होता है, यानी खुद को हराम के तो छोड़िए मुश्तबे चीजों से बचाने का इल्म हासिल करना और उसको पा जाना, ये वरा है। बास लोगों के नजदीक हद से ज्यादा मुस्तकिल सुकूत इख्तियार करने और किल्लते कलामी को वरा कहते हैं, यानी कम बोलना, कम बोलने को भी वरा कहते हैं, लेकिन ये बात ऐसी नहीं। राइटर है वो कहते हैं, मेरे नजदीक बोलने वाला या वाजो नसीहत करने वाला खामोश जाहिल से कहीं ज्यादा बेहतर और अफसल है। बात समझ आ गई। देखिए एक बंदा कहता है मैं गाड़ी चलाता ही नहीं, हादसा ही ना हो जाए, और एक कहता नहीं मैं चलाऊंगा लेकिन रुकावटों को बूर करते समझते हुए, तो अकलमंद कौन है? चलाने वाला। तो बोलिए, अल्लाह ने बोलना दिया, हम गूंगे थोड़ी हैं, लेकिन सोच के बोलिए। लोग कहते हैं कहाँ बोलना है, ये अकलमंदी है, हालांकि अकलमंदी के कहाँ रुकना है। जैसे मुझे ऐसे फील हो रहा है इस वक्त बात करते हुए, हैंड ब्रेक होती है ना गाड़ी में, कहाँ हैंड ब्रेक लगानी है, कहाँ बिल्कुल गाड़ी को हल्का करना है, कहाँ स्लो करना है, कहाँ हाथ से रोक लेना है, ये कैफियत आपके अंदर होनी चाहिए। आधा जुमला बोल के खामोश हो सकते हैं ना, तो कभी बुरा ना बोले। बस जब हम अपने बच्चे को 4-6 जुमले पूरी ग्रामर के याद करके सुनाते हैं, फिर डांट पूरी होती है। और बाज जब बच्चे को बस सादा जुमला बोल के ना छोड़ दें, उसका असर ज्यादा होता है। तो जितना बोलेंगे ना, उतनी बात खराब होगी। तो लिहाजा बुरा क्या है कि अपने इल्म को सही तरह से इस्तेमाल करना। अच्छा, आप देखते हैं कि इल्म के साथ भी बुरा का क्या ताल्लुक है। सूरह फातिर का भी रेफरेंस भी आया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से उसके इल्म वाले डरते हैं। तो क्या इल्म के साथ बुरा बढ़ता है? यानी आप सोचते हैं कि मैं बहुत मुत्तकिया होना चाहती हूँ, और हम सबका गोल तो बुरा ही है इंशाल्लाह, तो क्या इल्म हासिल करूं या इल्म छोड़ के वरा ले लूं बैठ के कमरे में? तो आइए इसको भी देखते हैं। इल्म और वरा का आपस में गहरा ताल्लुक है, क्योंकि बगैर इल्म और मार्फत के वरा और परहेजगारी बेसूद है, बल्कि बगैर इल्म के इसका सिरे से वजूद ही मुमकिन नहीं। कैसे? इस पे आप तारीफ देखिएगा अबू सऊद की। कहते हैं कि अल्लाह सुबहाना तआला की हराम करदा चीजों से तवर्रो या एहतियात और परहेजगारी हलाल और हराम के इल्म पर मौकूफ है, वो भी इल्म वो जो कुरान और सुन्नत पे हो। भाई सीधी सी बात है, जब इल्म ही नहीं लिया तो हलाल क्या है तो हराम के पता कैसे चला? नहीं पता तो हराम या शुबे से बचते बचते हलाल से बचने लग गए। तो इल्म बुनियाद है वरों की। जो लोग कहते हैं ना, इल्म ना हासिल करो, खुद सीख लो, खुद बैठ के घर पढ़ लो, वो मैं कहती हूँ खुद भी भटकेंगे दूसरे को भी भटकाएंगे। ऐसा बंदा सिर्फ अंधेरे में चाबुक टोइयां मारने वाला बंदा है, उसको पता भी नहीं कि मैं हराम को हलाल बना चुका हूँ, हराम को हलाल। तो इल्म के बाद ही वरा आता है। इस तरह इब्ने तैमिया रहमहुल्ला का इतना खूबसूरत कौल है, कहते हैं कि वरा का इतमाम, इतमाम कहते हैं कम्प्लीशन, और इकमाल ये है कि इंसान दो भलाइयों में से अफजल तरीन भलाई। अब ये जहन में रखिए, आपके सामने दो भलाइयों के काम है, एक छोटी है एक बड़ी है। इसके ऑपोजिट दो बुराइयों में से बदतरीन बुराई का इल्म रखता हो, और दोनों में हर चीज के परखने का गुर जानता हो, और उसे इस बात का भी इदराक हो कि शरीयत इस्लामिया की बुनियाद मसालिख यानी इस्लाह वाले काम, उसकी दस्तयाबी और इसकी तकमील में पिन है। अब ये इतना मुश्किल पैराग्राफ है, लेकिन इसको आसान लफ्जों में समझ लीजिए कि दो नेकी के काम आपके सामने हैं, कर एक सकते हैं आप, तो कौन सा करें जो बड़ा हो। और दो गुना के काम है जिनसे आपको रुकने में मजबूर किया जा रहा है कि इसमें से एक पे रुके, तो आपको पता हो किसका फसाद ज्यादा है उससे रुकना है। और ये कहाँ से आएगा? इल्म के साथ आएगा। और किस इल्म के साथ आएगा? कुरान और सुन्नत के इल्म से आएगा। मिसाल कैसे? कोई शख्स जालिम और जाबिर हुक्मरान के साथ फरीजे जिहाद की अदायगी पर आमादगी का इजहार ना करे और इसको बायस परहेजगारी गर्दाने, तो ये इसके इल्म से कोरेपन की दलील है। आज कई लोग कहते हैं ना, हुक्मरान ही नहीं अच्छे तो हम इनका साथ क्यों दें, ये जहालत है। वो अच्छे नहीं है, वो अपना काम करें, वो कल अल्लाह के आगे जवाब दें, आप तो काम करें। अगर एक बुरा बंदा आपको अच्छे काम की दावत दे तो मानिए, ये भी ले। इसी पे लोग दीनदारों को तनकीद करते हैं, खुद तो इनके अमल ऐसे हैं, हमें अमल की बात करते हैं। उनको छोड़िए, आप कीजिए, शम्मा भी तो खुद जलती है, आपको रोशनी देती है। तो अगर ऐसे बेअमल आलिम हैं दुनिया में, तो आप उनकी बेअमली को छोड़िए, अगर इल्म सही कुरान सुन्नत का दे रहे हैं तो ले लें, ये मतलब है। इसी तरह मिसाल इन्होंने एक दी है कि मिसाल है कि मुस्लिम फौज में कोई ऐसा कमांडर मुसल्लत कर दिया जाए जो गुनाहों में मुब्तला हो, खास तौर पर उस मौके पर जबकि इस्लामी फौज मैदान जंग में कुफार के सामने लड़ने के लिए तैयार हो। अब बिल्कुल लड़ाई हो रही है, इतने में कोई एक कैदे आके, इमेजिन करे ना, मुसलमान जो है वो लड़ाई में गए, दुश्मन से लड़ाई हो रही है, मान लेते हैं कि जो कमांडर है उसमें कोई कमी पेशी है, एन गुमसान का रन पड़ा हुआ है, और कोई आके कह दे तुम्हें पता है ये किसकी कमांडरशिप में तुम ये जंग लड़ रहे हो, वो तो फलां है। वो कह अच्छा, हम जंग छोड़ रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारा कमांडर बड़ा बुरा है। आप बताइए कि जू ही वो मैदान जंग से निकलेंगे, नुकसान किसको होगा? इस्लामी उम्मत को नुकसान होगा। यहाँ पल्ले से बांध लीजिए, पल्ले से बांध लीजिए ये बात। आप दीन का काम करते हैं ना, आप अल्लाह के लिए करते हैं, आप किसी को चंदा देते हैं ना, अक्कल से इस्तेमाल करें पहले, किसको दे रहे हो? कहीं ये इससे लोगों को कुछ और ही खिला पिला के तो नहीं आ जाएंगे? एक दफा दे दिया ना, उसके बाद कभी परचोल ना करे कि इमाम साहब वो किधर ले गए, इमाम साहब के घर में गया या किधर गए। और इमाम साहब कुछ भी करें, वो नमाज भी ना पढ़े ना, और आपको वो आके नमाज पे दर्स देते हैं ना, आप उनके कहने पे नमाज पढ़े। ये तो हम दीनदारों के पीछे खुर्दबीन लेके फिरते हैं ना, नुकसान ना दीनदारों को होता है ना आपको होगा, इतना नुकसान इस्लाम को होता है। जब चलते काम को छोड़कर आप इस तरह उसको ऐसे शुतर पे मुहार की तरह छोड़ दें कि भाई मेरे से ये काम आज के बाद नहीं हो रहा। मिसाल देखिए ना, मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ और अभी किताब थोड़ी सी रह गई है, एकदम मुझे किसी पे शक हो जाए, अल्लाह ना करे कि मुझे लगे कि आप में से कुछ की तो नीयत ही बिल्कुल ठीक नहीं है पढ़ने की, बेतुकी बात होगी। मैं आऊँ मैं कहूँ जी मैं पढ़ाने आई थी, लेकिन आप में से तो कुछ लोग जो इस नीयत से पढ़ ही नहीं रहे कि फायदा ले, ये तो इससे कुछ शर फैलाएंगे, तो खुदा हाफिज मैं नहीं पढ़ा रही, तो ये मेरा वरा नहीं होगा, ये मेरी बेवकूफी होगी। नुकसान किसका हुआ? आपका इल्म से नाता टूट गया। एक और चले, अल्लाह ना करे, मुझे तो मिसाल देते हुए भी बुरा लगता है, लेकिन मिसाल देती हूँ, मैं टीचर हूँ आपके स्कूल में, आपकी मैनेजमेंट से मेरा कोई इख्तलाफ हो जाए, मैं आपको कल तक पढ़ा रही थी, आज भी पढ़ाना था, सुबह मेरा किसी मैनेजमेंट के पर्सन से कोई झगड़ा हो जाए, या वो मैंने कोई मुतालबा किया हुआ था पूरा नहीं किया, तो मैं कह दूँ ये पकड़े पढ़ा लें जिससे मैं जा रही हूँ, मैं अपना पर्स पकड़ूँ टुक टुक सीढ़ियों से उतर जाऊँ, होता है ऐसा? अल्लाह की कसम इतना होता है, इतना होता है मुसलमानों के इदारों में, मस्जिदों में होता है। आप सोचेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि रात को लोग नमाज पढ़ के गए हैं तो वो एक मस्जिद थी, और जब अगले दिन फजर पे लोग आए हैं तो उस मस्जिद की बिल्डिंग के बीच में रातों रात दीवार खड़ी हो चुकी थी। अल्लाह की कसम मेरी आंखों के सामने, मैं खुद उस जगह को विजिट कर चुकी हूँ। मैनेजमेंट के इख्तलाफ में रातों रात उन्होंने बाड़ मंगा के, तार मंगा के कहा जी ये हिसाब जन, क्योंकि दो ग्रोह बन गए, और वही जो मुसीबतें मुसलमानों की, ये एक जगह नहीं दो तीन तो मेरे कानों में और आंखों में घुस रही हैं। नुकसान किसको हुआ? उम्मत मुस्लिमा को हुआ। वो गोरे जो इधर थे, जो उनके इर्द गिर्द गोरे हैं, उन्होंने बातें की, ये क्या हो गया? फिर एक के खिलाफ फिर दूसरे, और कैन यू बिलीव कि एक मुसलमान ईशा की नमाज पढ़ के निकले और 4-6 घंटे के बाद हमसाए जो है वो पुलिस को कॉल करें कि आग लगी हुई है, और बाद में एक शख्स खुद आके क्या कहे, हाँ मैंने आग लगाई। एक मुसलमान एक मस्जिद को आग लगा सकता है? अल्लाह की कसम ये हुआ, पूरी मस्जिद जलाई, और जल गई थी तो कह देते जल गई, उसने जाके अदालत में कहा हाँ मैंने जलाई है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये मस्जिद की जो मैनेजमेंट है ये इख्तलाफ हुआ, जला दी पूरी मस्जिद जली। फिर उस मस्जिद को गवर्नमेंट ने जो भी मामले थे उनको किसी और रखा, फिर वो पूरी A to Z नहीं बनी। ये बिल्कुल मेरी आंखों की देखी चीजें। आप क्या सोचते हैं कि उम्मत मुस्लिमा आज ऐसे ही तो नहीं मार खा रही? आज दीन के नाम पे जो हमने बेतुक्का काम किया ना कि मेरी मर्जी है मैं आ रही हूँ, मेरी मर्जी है मैं नहीं आ रही, ये क्या मेरी मर्जी तो है ही नहीं, मैंने तो खुद अपने हाथ बांधे हुए हैं। आपके साथ तो इस तरह का कोई अभी तक मामला ही नहीं पड़ा, यकीन करें कि मैं माइक पे होती हूँ और मुझे ऑनलाइन पे मैसेज आ रहे होते हैं, इस तरह से 10 मिनट रह गए, तो मैंने प्यार से उनको पूछा अगर मैं ना छोड़ू माइक, तो उन्होंने कहा 10 मिनट क्लास लेट खत्म होगी, जितना आप ऊपर लेंगी उतना ऊपर होगा। फिर बाद में सॉरी करे तो मतलब हमारा जोक चलता है आपस में, तो मैंने उन्हें कहा नहीं आपकी तो जॉब ही ये है सिस्टर, आपका तो टाइटल ही ये है कि आपने क्लास को वक्त पे रखना है, उसके टाइम टेबल को फॉलो कराना है, तभी तो आप देखते हैं पिन के साथ पिन मिलके कोर्सेज पूरे होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें एक कौमी मुफाद प्यार है, ये किताब कोई पूरी होनी है, लेकिन ये किस बात पे हो रही है कि जब कहा है 3 वीक है तो ये 3 वीक ही है, जैसे भी होगा जो भी है जो नसीब में आपको मिल जाएगा। तो जब तक आप मिलके कॉज को नहीं फॉलो करेंगे, आपका दिल ही नहीं कर रहा बिस्तर से उठने को, जाए जी हो जाएगा जो होगा, तो शुरू के 20-25 मिनट कौन लेगा आपकी क्लास? आप आए हैं कोर्स करने, आपने तजवीद ही छोड़ दी, तो जब तक ये काम नहीं आएंगे आप समझे आप में बरा नहीं है। सारी रात तहज्जुद पढ़ के सोए ना, और सुबह अपनी जिम्मेदारी पे वक्त पे ना पहुंचे, तो ये बरा की कमी है। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि जो मैदान जंग से वो भागेगा ना, उस कमांडर का कोई फायदा होना है उसमें ना, इसका होना है नुकसान इस्लामी हुकूमत को होगा। फिर एक और मिसाल देते हैं, ये भी बड़ी अच्छी है, कहते हैं कि इसकी एक और मिसाल है कि एक शख्स, उसके बाप का इंतकाल हो गया, उसने तरके में मुश्तबे माल छोड़ा। अब जो माल मिला ना विरसे में, शक था, यकीन नहीं, शक था कि ये माल ठीक नहीं है, और वो जिसको मिला मकरूज भी था। लोगों ने देखा कि जब इसको माल और जायदाद मिल गया है तो उसने आके कहा कि अपने बाप का कर्जा अदा करो, तो कहने लगा कि चूंकि मुझे अपने बाप के माल पे शुबा है तो लिहाजा मैं उसके कर्ज की अदायगी भी नहीं करूंगा। तो ये क्या होगा? इसको वराए फासिद कहेंगे, बिगड़ा हुआ वरा है, ऐसा शख्स जाहिल है। क्यों? कि लोगों के हकूक को अदा करने से वो रुक रहा है सिर्फ एक शक पे, शुबा पड़ गया ना कि बाप का माल है, जबकि कर्ज की अदायगी वाजिब थी। उसको क्या करना चाहिए था? उस माल से, चाहे वो शुबे वाला था कुछ था, लोगों का कर्ज अदा करते। ताकि फिर उसके बाप के सर से कर्ज का बोझ भी तो खत्म हो जाए। तो ये चीजें कब होती हैं? जब बंदा अपने दिमाग से दीनदार बनता है। देखिए, उस्ताद का सिर्फ एक काम होता है मेरे ख्याल में, किताबें तो सामने लिखी होती हैं, वही किताब आप खुद भी पढ़ लें, वही सुन लें। उस्ताद क्या करता है? ट्रिम करता है। जैसे आप एक दरख्त को देखें तो वो सड़क के किनारे खुद ही उग जाता है, तो उसका क्या हाल होता है? उसकी शाखें इधर भी उधर भी है, आने वालों के कपड़े फाड़ेगा, रास्ते में गंदगी आएगी। एक दरख्त कहाँ है? किसी माली के कस्टडी में, बाग में लगा हुआ है, उसकी ट्रिमिंग होती है। तो ये जो हम खुद किताबें पढ़ते हैं ना, इसमें हम ट्रिम नहीं होते, उसमें हम इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। खुद कहते हैं किसी किताब में कुछ पढ़ा, किसी में कुछ पढ़ा, अब करें क्या? जो मन चाहे वो करें। तो यहाँ क्या दुरुस्त है, कसूल समझ लीजिए कि जहाँ वाजिब और मुश्तबे चीज का तकाबुल हो। अब ये आपके लिए एक रूल बन रहा है जिंदगी का, बहुत दफा ऐसा आएगा आपको शुबा हो रहा है किसी माल पे, यकीन नहीं है, शुबा है कि इसमें कोई गड़बड़ है, इनके बिजनेस में कोई खराबी है। दूसरी तरफ आपने किसी का कोई वाजिब पूरा करना है, ज़कात देनी है या कुछ और करना है, किसी औरत है उसको शुबा पड़ता है कि मेरे शौहर की कमाई में कुछ 1-2% गड़बड़ है, लेकिन साथ ही कर्जा भी है सर पे। तो कह नहीं, अब ये शुबे के माल से मैंने कर्जा दे दिया तो ये तो गलत है, तो ये बेवकूफी होगी। उसको कर्ज दूर करना चाहिए फटाफट, फिर बाद में वो शुबे को दूर कर ले, जो भी हकीकत है उसको देख ले। ये कहते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि जहल की बुनियाद वाजिबात की परवाह नहीं करते, और कहते ही हैं कि परहेजगारी का तकाजा यही है कि हम अपने मिशन को जारी और सारी रखें चाहे जो भी हो। यदि वही बात है कि उनको फर्क समझ नहीं आता कि किस वक्त हमें क्या करना चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए, इमाम इब्ने तैमिया का एक कितना खूबसूरत एनालिसिस है। कहते हैं, बाज लोग जुमा या जमात के साथ इमामों के पीछे नमाज अदा करना छोड़ देते हैं। कौन से इमाम? जिनमें बिदत या फिस्क व फजूर का शुबा पाया जाता है। शुबा याद रखिए, ये नहीं कि जो इमाम खुद माइक पे आके वो कुछ बुजुर्गों की और कहानी और कब्रों के ऊपर सजदे करने की बात करते, उसकी ये बात नहीं हो रही। इसको आप ऐसे लें, बल्कि मुझे किसी का वाकया भी एक याद आ गया। आप सफर में हैं, आप यहाँ से कहते हैं हम बाय रोड जाते हैं, कोई भी शहर ले लीजिए, रास्ते में एक मस्जिद आए, आप मस्जिद में नमाज के लिए रुके। आपको नहीं पता ये मस्जिद कुरान सुन्नत आलों की, आपको नहीं पता ये मस्जिद किन की है, कुछ भी, आपका क्या काम है? आप उठे, नमाज पढ़े जाए, जमात हो रही है तो मिल जाए। सिर्फ डाउट की बेस पे कि नहीं पता नहीं ये इनके अकीदे में खराबी हो, पता नहीं ये हराम काम ना करते हो, मैं जमात छोड़ देता हूँ, अकेले पढ़ता हूँ, ये दुरुस्त नहीं होगा, राइट? तो ये कहते हैं कि जिन इमामों के बारे में शक होता है कि इनमें बिदत है या कोई फिस्क है, फिस्क मतलब बड़े गुना, तो फिर वो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, हालांकि ये वरा नहीं है सच्चे गवाह की गवाही कबूल करने और आलम दीन से तालीमो ताल्लुम या एक फैज हासिल करने से सिर्फ इसी बुनियाद पर रुक जाना कि वो हल्की फुल्की बिदत का मुर्तकिब है, और हक की इस दोहाई को कबूल करने से इनकार कर देना, हालांकि जिसका सुनना और कबूल करना वरा का तकाजा है। तो बात मुश्किल है। खुलासा क्या है? जिस इमाम के बारे में सिर्फ शक हो, डाउट हो, आप उसके पीछे पढ़ लीजिए नमाज, फर्ज नमाज है, आप पढ़ लें, आपकी नमाज आपकी है, उसकी आप उसकी। हाँ, आदत ना बनाए कि एक बंदा कुरान सुन्नत के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है और दूसरी मस्जिद चूंकि आपके करीब है, आपको साफ पता है कि उनके अकायद में खराबी है और वो दीन से दूर है, फिर आप उनको रौनक ना दें, फिर आपको उस जगह पर रौनक बख्शना भी ठीक नहीं, सिर्फ इस वजह से कि वो घर के करीब है। चूज उसको करे जिसमें कुरान सुन्नत है, लेकिन अगर कभी रात जाते पड़े, कोई आपके घर आ गया, कोई चले गए, तो ऐसे वक्त में लोगों से फिर सफाइयां न पेश करें। और आगे आप बात पढ़ेंगे कि जब किसी के बारे में शक पड़े तो करना क्या चाहिए। हम यहाँ कुछ प्रैक्टिकल कहानियां सुनते हैं, क्योंकि वरा समझ ही अमली बातों से आता है। ये वो सब्जेक्ट है, लिखे वैसे नहीं समझ आता जब तक लोगों का किया ना दिखे। तो हमारे जो सल्फ सालेहीन थे उनमें बहुत ज्यादा वरा था, आजजी भी बहुत थी, तवाज़ो भी बहुत था, और अमूमन इस तरह की कोशिशें मेहनतों से हासिल होती हैं। यानी वो मेहनत करते थे अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, ताकि फिर उनको अपने ऊपर काबू आ जाए। इमाम शाबी का एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, कहते हैं, उलमा के गिरोह से ताल्लुक रखने वालों, अब जो हैं उलमा वो इस जुमले को सुन के खुद ही कहेंगे जी। दूसरे, ए फुकहा की जमात से वाबस्ता लोगों, हम ना तो फुकहा हैं और ना ही उलमा, लेकिन हमने हदीस नबवी को सुना, तो हमने जो कुछ सुना इसी को हम तुम्हारे सामने बयान कर रहे हैं। और फकीह तो वो है जो अल्लाह की नाजायज करदा हराम करदा चीजों से वरा यानी परहेजगारी करने वाला हो, यानी इनसे दूर रहने वाला हो, और आलिम वो है जो अल्लाह के खौफ और खशियत से सरशार हो। बात वाज़े, ना खुद को फकीह कहलाना चाहिए ना आलिम कहलाना चाहिए। कितना मशहूर कोर्स है हमारे कल्चर में, आलिमा का कोर्स, आलिमा फाजिला का कोर्स। एक जगह कहीं थे हम, तो हाजरीन में जो लोग थे उनसे कुछ बात हो रही थी, तो एक सिस्टर थी अच्छी दरमियानी उम्र की थी, तो बात हुई कोई, तो कहने की मैं आलिमा हूँ ना, तो मैं समझी उनका नाम आलिम है। मैंने कहा अच्छा काफी यूनिक नाम है, तो मैं समझी इनका नाम आलिम। रियली मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा कि दूसरे भी लोग अपना नाम बता के बात शुरू कर रहे थे। ऐसे शुरू में दर्स की इंट्रोडक्शन होते हैं ना, आप कौन है, आप कहाँ से, तो आप भी बता रही हैं, तो वो भी कहेंगे मैं आलिम हूँ। मैंने जब उनकी बात को इतना नोटिस नहीं, फिर वो कहेंगे नहीं मैं आलिमा फाजिला हूँ। फिर बाद में उन्होंने अपना नाम बताया, फिर उन्होंने बताया मैंने किसी मदरसे से ये कुछ पढ़ा हुआ ना। और यकीन करें कि जब वो कुरान या दर्स की कोई कुरान की तफसीर की बात होती है तो उनको नहीं पता होता, तो कभी भी अपने नाम के साथ कोई साहब का लाख करना लगाए। इतना ज्यादा इस पे गौर व फिक्र होता है, यकीन करें हर जगह जहां फ्लायर छपने होते हैं, जहां नया काम शुरू होता है, लोग टाइटल मांगते हैं, आप बताएं आपका क्या टाइटल है। भाई मेरा नाम एक ही है सिस्टर, बहुत लिखना तो इंस्ट्रक्टर लिख दीजिए अपने स्कूल के नाम के साथ, मुझे इसे ज्यादा ना मुश्किल में डालें, मेरी बला से। आप मुझे डायरेक्टर लिख दें, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन लिख दें, कुछ लिख दें, मुझे क्या लगे इससे, अल्लाह की नजरों में मेरा क्या मुकाम है। तो ऑलवेज अपना प्रोफाइल लो रखें, नीचा रखें, कभी अपने नाम के साथ ना करें। आप ये कोर्सेज कर रहे हैं ना, आपके किसी कोर्स के बाद कोई टाइटल तो नहीं आपको मिलता ना? जैसे आप देखिए कि हम हाज करने वाले को हाजी कहते हैं ना, नमाज पढ़ने वाले को नमाजी कहते हैं, तो ज़कात देने वाले को क्या कहेंगे, सदका देने वाले को क्या कहेंगे, कहाँ रुकेंगे, आपके तो इतने नाम बन जाएंगे। तो बस अल्लाह का आजिज और मस्कीन बंदा खुद को कहें। पिछली उम्मतों के तकवा की कहानी बहुत ही मशहूर है, आपने सुनी भी होगी, और किसी के साथ आज भी हो तो ऐसा हो सकता है, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, और चूंकि अल्लाह के नबी ने सुनाई है तो इंशाल्लाह ये हकीकी होगी। एक शख्स ने जमीन बेची और एक ने खरीदी, बहुत करके जब चीज हो गई खत्म हुई, जिसने खरीदी बाद में उसने उसको जरा खोदना शुरू किया कि चलो इसमें कुछ काम करें, तो अंदर से एक देग निकली सोने से भरी हुई थी। अब जिस शख्स ने खरीदी उसको क्या चाहिए था कि मेरी जमीन है मैंने ले ली, लेकिन उसका बरा उसको क्या कहता है कि बात सुनो तुमने तो जमीन के पैसे दिए, सोने की देख के तो नहीं दिए। अब क्या हुआ, वो गया उस शख्स के पास जिससे खरीदी थी, कहने लगा कि मैंने जमीन तुमसे खरीदी है लेकिन उसमें से ये सोने की चीज निकली है। उसने कहा जो भी निकली जब मैंने तुम्हें दे दी तो तुम्हारी, कहने का नहीं ये तो नहीं होगा। देखिए वरा का आखिरी हद, हम तो कोई चीज भी फालतू किसी के आ जाए कहते खुद ही डाल दी होगी ले लो, खुशी से दे दी होगी, नहीं। खैर मामला चला, अब कहा क्या करें। दोनों जो थे वो एक तीसरे शख्स के पास गए कि हमारा मामला सेट करो, दोनों ही नहीं ले रहे, पड़ी हुई है। उसने कहा तुम जब, तो तुम्हारे बच्चे हैं, कहाँ, एक का बेटा था एक ही बेटी, कहने लगा तुम दोनों की शादी कर दो और ये पैसा उनको दे दो और बाकी जो है वो सदका कर दो। ये होता है वरा, कर सकते कोई ये, हम तो कानो कान खबर ना होने दें कि किसी की कोई चीज अंदर से निकल आई है। तो कहीं से कभी ग्रोसरी स्टोर से भी कोई चीज खरीदे ना, और लिस्ट में से कोई चीज ज्यादा निकल आई या जो आपने नहीं ली थी, फौरन वापस जाए, वो चाहे एक दो डॉलर की चीज क्यों ना हो, लेकिन वो आपके वरा का इम्तिहान हो सकता है। बंदे ने नहीं डाली, फरिश्तों से अल्लाह डलवा के आपका वरा चेक करवा सकता है। इसी तरह की एक और कहानी है, हजरत अबू हुरैरा से ये भी रिवायत है, नबी सल्लम के बारे में आता है, हसन बिन अली से। बच्चे थे भी ये, खजूरों में से एक खजूर ली और मुंह में डाल दी। अल्लाह के नबी ने जू ही मासूम बच्चे को खजूर मुंह में डाले देखा, कहा थूको थूको, फिर फरमाया तुमको पता नहीं हम लोग सदके का माल नहीं खाते। अब आप देखिए बच्चा, और बच्चे तो वैसे ही रफुल कलम होते हैं, उनके अमल नहीं लिखे जाते, कमसन था, गैर मुकल्लफ था, लेकिन अल्लाह के नबी का वरा था कि आपने अपने नवासे को वो चीज जो जायज नहीं थी उसका एक लुकमा भी ना खाने दिया। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लम ने फरमाया मैं अपनी अहलिया के पास आता हूँ यानी घर में आता हूँ, तो बिस्तर पर मुझे कोई खजूर वगैरह मिलती है, खाने के लिए उसको पकड़ भी लेता हूँ। अब घर में मर्द आए तो खाना खा सकते हैं ना, डाइनिंग टेबल पे कुछ रखा है खा ले, लेकिन फिर मैं इस ख्याल से कि कहीं ये सदके की ना हो इसको छोड़ देता और नहीं खाता। मुश्किल है। और मैं आपको बताऊं पीछे तो हमने बात की ना, जुबान का वरा मुश्किल है, जैसे बोलने में जुबान का वरा मुश्किल है ना, वैसे ही जुबान के टेस्ट का वरा भी बड़ा मुश्किल है। आप कहीं जाएं और कोई ऐसी चीज आपके सामने है, खुशबू आ रही है, मजे की है, टेस्टी है, लेकिन वो कोई बिदत हो रही है वहां, या आपको शक है कि जिनके घर का खाना है वो ठीक नहीं, यकीन की बात है कि ठीक नहीं है, उस वक्त जो रोकना मुश्किल है। फिर लोग जो तावीलें करते हैं, अल्लाह की पनाह ये है वो है, फिर ये हमारे घरों में नहीं आएंगे, फिर हम के नहीं जाएंगे, फिर वो नहीं, इतने वाजे इशारे हैं। और तो पेट के अंदर जो खाना जाता है ना उसका वरा बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ वही कर सकता है जिसने खुद को सेल्फ कंट्रोल का आदी किया हो। इसी तरह सहाबा का वरा देखिए, मशहूर वाक्य आपने सुलह हुदैबिया के नाते में सूरह मायदा में सुन रखा है कि अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी के साथ गए, ये असल में हुदैबिया के सफर की बात है, काहा नाम की वादी में स्टॉप ओवर था, कुछ लोग एहराम से थे कुछ नहीं थे। कहते मैंने देखा अपने दोस्तों को, वो किसी चीज के देखने में बड़े महव हैं, मैंने गौर से देखा तो वो नील गाय थी, यानी वो गोश्त खा सकते थे उसका, और वो गोश्त तो मिलता भी इनको कम था, ये एहराम में नहीं थे अबू कतादा। कहते हैं जब मैंने देखा, लोगों ने पहले खंगूरे मारे कि शायद मैं देख लूं कुछ करूं, खैर कहते हैं जब मैं गया कि मैं एहराम में नहीं था, मैं उसका शिकार कर सकता था, तो कहते हैं जूं ही जल्दी में मैं अपने घोड़े पे बैठा तो मेरा कोड़ा नीचे गिर गया, तो मैंने पास खड़े शख्स को कहा ये जरा मुझे कोड़ा पकड़ा दो, लेकिन उसने इस डर से कि शिकार की नीयत से तुम जा रहे हो और अगर तुम्हें कोड़ा पकड़ा दिया तो कहीं हमारे अहराम पे इसकी हद ना पड़े, उन्होंने नहीं दिया। ये वहां से उतरे नीचे, फिर उसके बाद उसको उठाया और उस नील गाय को काटा, उसका शिकार किया और वापस गोश्त लेकर आए। अब साथियों को शक हुआ, कहा नहीं हम एहराम में हैं, पता नहीं ये शिकार का गोश्त भी हम खा सकते हैं कि नहीं, तो मामला नबी सल्लम तक पहुंचा तो आपने फरमाया कि खाओ पियो ये हलाल है, शिकार करना मना है, गोश्त खाना तो मना नहीं है ना। तो ये देखिए सहाबा का वरा एक कोड़ा नहीं उठा के दे सके अबू कतादा को। हम कहते हैं अबू कतादा माइंड कर जाएंगे, ये मेरे रिश्तेदार हैं, वो है दिस एंड दैट, तो लेकिन मदद नहीं की, लेकिन भी गोश्त सबने मिलके खाया, तो ये भी तकवा की बात है। इसी तरह आप देखिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका तकवा क्या था, याद रखिए नबी सल्लम के बाद उम्मत में सबसे बड़ा मुतवर्रे जो इंसान गुजरा है ना, वो अबू बकर सिद्दीक है। वलीउल्लाह कह लें, पहुंचावा कह लें, अल्लाह का करीबी कह लीजिए, वो अबू बकर थे। और उसकी वजह क्या थी कि उनके अंदर वरा हद से बढ़ा हुआ था। हजरत आयशा कहती कि अबू बकर का एक गुलाम था, वो इनको खराज अदा किया करता था, कुछ ऐसे काम पे था कि खराज आपको पता है ना क्या होता है, नॉन मुस्लिमों से जो माल जमा किया जाता है, किस्सा मुखसिर के आप अपने लफ्जों में सुन लें कि अबू बकर का एक गुलाम था, तो वो कुछ काम करता था, उसके बाद कुछ खाना लाता अबू बकर को पेश करता तो ये ले लेते थे इस राह मोहब्बत, जैसे आपकी मेड कुछ के बाजी ये मैं घर से लाई हूँ आप भी खा लें, खा लेते हैं। एक दिन उसने अबू बकर को कुछ पेश किया तो अबू बकर ने लिया और पेट में डाल लिया, तो गुलाम ने कहा कि अबू बकर ये जो मैंने अभी आपको चीज दी है ना, ये कहाँ से दी है, जाहिलियत के जमाने में मैंने किसी शख्स की कहानत की थी, कहानत क्या थी, पमिस्ट्री, सितारों का हाल मालूम किया, हालांकि मुझे आता कोई नहीं था, बस मैंने धोखा देने के लिए किसी को कहा तुम्हारे सितारे ये कहते हैं वो कहते हैं, तो उससे जब मेरी मुलाकात हुई तो उसने ये चीज मुझे अब दी है। तो अबू बकर सिद्दीक ने उसी वक्त अपने मुंह में उंगली डाली, कह की पेट का निकाला, क्यों, कि मैं अपने पेट में कोई ऐसा लुकमा भी ना ले जाऊं कि जो पामिस्ट्री और किस्मत मालूम करने के हाल से हो। हालांकि वो शक था, आता कोई नहीं था उसको, लेकिन अबू बकर के पेट में यानी सिद्दीकों के पेट में ऐसे लुकमे नहीं रहते, ये तो बड़े हौसले वाले लोग होते हैं जो इन टुकड़ों को बर्दाश्त करें और फिर भी दुनिया में नेकियां करते रहें, क्योंकि इन टुकड़ों का सबसे बड़ा नुकसान ही क्या होता है कि इंसान से नेकियां रुखसत होती हैं। फिर हजरत उमर फारूक का तकवा सुन लीजिए, इब्ने उमर खुद अपने बाप के बारे में कहते हैं कि आपने मुहाजरीन में से 4 लोगों के लिए 4,000 दीनार या दिरहम मुतय्यन किए, ठीक है, जो लोग हिजरत करके आए थे उनको प्रोटोकॉल मिलता था उमर के दौर में, तो 4,000 एक एक बंदे को दिया। अब उन 4 में से एक इब्ने उमर भी थे, अबू बकर इनको 3,500 देने लगे। लोगों ने पूछा कि भाई सबको 4,000 तो इसको आप 3,500 क्यों दे रहे हैं, बेटा तो था ही, कहने लगे देखो तुम सब ने अपने शऊर से हिजरत की, जबकि इब्ने उमर ये जो बच्चा है इसको तो इसके माँ बाप उठाकर ले आए थे, यानी हिजरत के वक्त में कोई इसका इरादा तो मौजूद नहीं था ना, बच्चे जो थे उस वक्त इब्ने उमर बहुत छोटे थे जब मक्का से मदीना हिजरत हुई, तो लिहाजा कहा तुमने जो काम अपनी नीयत से किया है तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा, इसको कम दूंगा। और दूसरी बात है कि बेटा भी था, कितना मुश्किल होता है ऐसे वक्तों में अपने आप को जमाना, यही वो वक्त है जहां प्रिविलेजेस ले जाते हैं मेरा फायदा। आप देखिए एक रूल है ना, कोई भी स्कूल का रूल बना लें, किसी इदारे का रूल बना, रूल तो सबके लिए रूल है, मेरे लिए भी रूल है आपके लिए भी रूल है, मैं अपनी किसी पोजीशन से फायदा उठाते हुए बेनिफिट ज्यादा ले जाऊं आप सबसे तो नुकसान किसको हुआ, दीन को नुकसान हुआ, ये वरा की कमी होती है। इसलिए जिसको जो भी जिम्मेदारी मिले ये उसका इम्तिहान होता है, क्या उसकी आड़ में कोई अपने लिए जाती फायदा तो नहीं रखा हुआ कि ये काम ही मैंने करना है ताकि मुझे इससे ज्यादा फायदा हो जाए। پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سالمہ بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مدینہ کی عورتوں میں چادریں تقسیم کی، آخر میں ایک بڑی خوبصورت چادر بچی جو بڑی قیمتی تھی. تو حضرت عمر کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، یہ آپ اللہ کے نبی کی نواسی کو دے دیں جن کا نام ام کلثوم بنت علی ہے. کون ہوں گی؟ حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی یہ، اور حضرت عمر کے نکاح میں تھی. پہلے تو آپ ذرا اس پہ غور کیجئے. کبھی آپ جب عربوں کے رشتے دیکھتے ہیں تو آپ چاروں کو لکھ کے دیکھ لیں، ابو بکر، عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے داماد بھی تھے، داماد تھے نا. کبھی آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی نے کوئی بڑک ماری ہو تو میں پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا، تمہاری بیٹی میرے گھر میں ہے، عمر تم ذرا سمجھ کے رہنا. دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت عمر کے نکاح میں، اور اسی طرح ابو بکر کا بھی تھا آگے. یہ کیوں بھائی؟ اب آپ سوچئے کہ حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت عمر سے کتنی چھوٹی ہوں گی، اس پہ کبھی آپ نے بات بھی نہیں سنی ہوگی. تو عائشہ کے نکاح پہ کیوں اتنی پریشانی ہے لوگوں کو؟ عربوں کا کلچر تھا اور یہ رشتے داریاں جوڑتے تھے. حضرت عمر کو اس چیز کا بڑا ملال تھا کہ میرا تعلق اس طرح سے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جیسے دوسروں سے ہے. تو حضرت عثمان کے نکاح میں آپ کی دو بیٹیاں تھیں نا، تو لہٰذا حضرت عمر نے آپ کی نواسی سے نکاح کیا تھا. اور جب ماں باپ کرنے کو تیار ہے تو آج والوں کو کیا تکلیف ہے؟ کبھی کسی نے اس دور میں نہیں کہا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی عمر کی بیٹیاں تمہارے بڑے بڑے مرد لے کے جا رہے ہیں. ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ آج کے صرف شوشے ہیں. تو خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ ان کو دے دیں، چلے آپ کی بیوی تو ہیں، وہ نبی کی نواسی تو ہیں، کہنے گئے نہیں، ام سلیت اس کی زیادہ حقدار ہے جو انصاری قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے بیعت خود کی تھی. تو حضرت عمر نے کہا یہ وہ عورت ہے جو غزوہ احد کے دن مشکیزوں کی سلائی کیا کرتی، سیتی تھی، پانی بھرتے ہیں نا، مشک ہوتی ہے، پھٹ جاتی ہوں گی. تو کہتی چونکہ وہ کرتی تھی تو ان کو دیں گے، ہم ہوتے تو کہتے آج بیگم کو خوش کرتے ہیں، آج بیگم میں تمہارے لیے وہ لائے ہوں جو نہیں ہے. ان صحابہ کے اس بارے میں تصور بھی آتا ہے ان چیزوں کا، ان کے معیار سے بہت گری ہوئی چیز لگتی ہے. تو ہمیشہ اپنے لیے بہترین معیار رکھیں، کوئی نہ دیکھے تو اللہ دیکھ رہا ہے. پھر آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ میں نے کیا کیا. یہ آپ کا صدقہ ٹیبل ہے، کبھی آپ نہیں ہوتے، میں کہیں جاتی ہوں، میرا دل کرتا ہے کوئی چیز لے جاؤں کسی کے لیے، میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں، یہاں سے کچھ لیتی ہوں. غم کیا پڑا ہوتا ہے کہ بتانے سے پہلے میں مر گئی کیا ہوگا، کس کو بتاؤ. پرسوں بھی جا رہی تھی کہیں، یہ اللہ کا شکر ہے آپ کا نمائندہ ادھر موجود تھا، تو قیمت نہیں تھی لکھی. پھر اس نے اپنی گواہی پہ کہا کہ آپ لے لیں، فکر نہیں کریں، اور اس کے پیسے ہم آپ سے لے لیں گے. تو پھر میں نے جا کے کسی کو گفٹ میں دی جن کے گھر میں جا رہی تھی، مجھے کون روکے گا بھائی، آپ کو کیا پتہ چلے گا، لیکن مجھے تو پتہ چلتا ہے نا. تو کبھی بھی اپنے بچوں کو بھی عادی کریں، یہ آپ کا چھوٹو، یہ آپ کا بیٹا جو بریک میں گناہ کماتا ہے، آپ کو پتہ کل ادھر سے آیا، یہ ادھر سے آگے نا، پہلے یہاں جو سسٹر بیٹھی تھی نا، اس نے اس کا وہ پکڑا ہائی لائٹر، اس کو کہتے رہو، اس کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کہ مجھے کہا کہ نہیں کہا، اس نے اس کا ہائی لائٹر اٹھایا تھا. تو میری تو جان پہ بن گئی کہ جو بھی سسٹر بیٹھی تھی آئیں گی تو ہائی لائٹر نہیں، ادھر سے پکڑ کے نا اسے ادھر چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو ادھر ایک اور دکھ گیا. میرے پاس پتہ نہیں کون تھی، میں نے کہا جلدی کرے، شاید یہی تھی. تو انہوں نے پھر لا کے اس کو واپس لیا، پھر ادھر سے واپس جا رہا تھا، جاتے جاتے ان کا اٹھا کے جا رہا. تو میں نے کہا اس کو عقل سکھاؤ بھی کہ یہ ہائی لائٹر بھی کوئی 20-25 کرون کا تو آتا ہی ہوگا، تو یہ کل دینا پڑے گا. تو بچوں کو یہ سکھائیں، کبھی اپنے بچے کے بیگ میں کوئی شارپنر، کوئی پینسل، کوئی لیڈ، کچھ بھی دیکھے فوراً روکے. اسی سے انشاءاللہ پھر ان کے اندر احساس بڑھے گا اللہ کے حکم سے.